रेडियो तेहरान के सभी श्रोतागण, जहरा जैदी और साथियों का सलाम स्वीकार करें। श्रोताओं, सदैव की भांति कार्यक्रम का आरंभ हम कुरान मजीद की पवित्र आयतों से कर रहे हैं। आज आप सूरह दहर की तीसरी से लेकर ग्यारहवीं आयतों तक की तिलावत और अनुवाद सुनेंगे। कारी हैं मोहम्मद सिद्दीक मिनशावी।
بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا
صدق الله العظيم
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہم نے منوشے کو مارگ دکھا دیا ہے، اب چاہے وہ کرتگ رہے یا اکرتگ۔ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ نشچے ہی بھلے لوگ ایسے پیالے سے پئیں گے جس میں کافور کی بھلی مہک کا مشرن ہوگا۔ وہ ایک سروت ہوگا جس سے اللہ کے وشیش بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے۔ ایشور کے یہ بندے منت پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا دنڈ ویاپک ہوگا، اور وہ کھانے کی چاہت و آوشکتا رکھنے کے باوجود اسے محتاج، اناتھ اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کیول اللہ کی پرسنتا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، انیتھا نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ آبھار۔ ہمیں تو اپنے پالنہار کی اور سے ایک ایسے دن کا بھے ہے جو اتینت کرور اور لمبا ہوگا۔ تو ایشور نے انہیں اس دن کی کڑائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی و پرسنتا پردان کی۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤ، ہمارا پرسارن آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज रविवार है, मुर्दाद की 15, मुहर्रम की 19 और अगस्त की 6 तारीख। इस समय में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा, उसके बाद आप सुनेंगे कुरान ईश्वरीय चमत्कार और अंतिम कार्यक्रम होगा आज कल। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए हमारी वेबसाइट देखते रहिए, पता है parstoday.ir/hi। अब आप सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। पैंसठ हजार किलोमीटर का समुद्री सफर तय करके पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले ईरान की नौसेना के 66वें स्क्वाड्रन के वरिष्ठ नेता ने सराहना की है। ईरानी राष्ट्रपति का कहना है कि ईरान और श्रीलंका के बीच मजबूत रिश्ते दोनों देशों के हित में हैं। पाकिस्तान में एक मुसाफिर ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसके कारण कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में जेल भेज दिया गया है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनाई ने इस्लामी गणतंत्र ईरान की नौसेना के 86वें स्क्वाड्रन के कमांडरों, कर्मचारियों और उनके परिवारों से मुलाकात में कहा है कि आप लोगों ने गौरवपूर्ण कार्य किया है। इस्लामी गणतंत्र ईरान की नौसेना के 86वें स्क्वाड्रन के कमांडरों, कर्मचारियों और उनके परिवारों ने रविवार की सुबह ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता से मुलाकात की। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने इस मुलाकात में कहा, दुनिया का चक्कर लगाने का महान मिशन आप लोगों ने पूरा किया है, जो ईरानी नेविगेशन के इतिहास में अभूतपूर्व है। ये मिशन सेना और IRGC के अतीत के बलिदानों का परिणाम है। आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनाई ने इस्लामी गणतंत्र ईरान की नौसेना के 86वें स्क्वाड्रन के कमांडरों, कर्मचारियों और उनके परिवारों को संबोधित करते हुए कहा, क्रांति के आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं से लेकर आज तक दी गई कुर्बानियों के परिणाम स्वरूप आज की सफलताओं के लिए भूमि प्रशस्त हुई है। इस्लामी क्रांति के नेता का कहना था कि सेना और IRGC ने समुद्र में बहुत कुर्बानियां दी हैं, जिनका फल आज मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने यह साबित कर दिया कि आज़ाद समुद्रीय क्षेत्रों पर सभी का अधिकार है, और जो लोग ये दावा करते हैं कि हम कुछ जहाज़ों को नहीं गुजरने देंगे, वो सब गलत साबित हो गया। गौरतलब है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान की नौसेना के 86वें स्क्वाड्रन ने हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से गुजरते हुए 65,000 किलोमीटर का समुद्री सफर तय किया और पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है। ये स्क्वाड्रन दुनिया का चक्कर लगाने के बाद 20 मई को स्वदेश वापस लौटा, जिसका ईरानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों और नौसेना के युद्धपोतों ने सलामी देकर स्वागत किया। ईरानी स्क्वाड्रन ने 20 सितंबर 2022 को दुनिया भर का चक्कर लगाने के लिए ये यात्रा शुरू की थी।
रविवार को ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने तेहरान में श्रीलंका के विदेश मंत्री अली सबरी से मुलाकात में कहा कि दोनों देशों में पाई जाने वाली क्षमताएं द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराती हैं। ईरानी राष्ट्रपति का कहना था कि गैर कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, इसलिए दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग से ईरान और श्रीलंका दोनों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि श्रीलंका समेत दुनिया के कई देशों में अत्यधिक संभावनाएं पाई जाती हैं, लेकिन साम्राज्यवादी शक्तियों के हस्तक्षेप के कारण इन देशों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अगर यह हस्तक्षेप नहीं हो तो ये देश अच्छी प्रगति कर सकते हैं। श्रीलंकाई विदेश मंत्री सबरी ने भी इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार पर बल दिया। श्रीलंका में ईरानी कंपनियों की गतिविधियों का उल्लेख करते हुए श्रीलंका के विदेश मंत्री ने विभिन्न आर्थिक, तकनीकी और चिकित्सा क्षेत्रों में ईरान के साथ सहयोग के विस्तार में रुचि दिखाई। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली सबरी ने इससे पहले शनिवार को ईरान के विदेश मंत्री और अन्य उच्चाधिकारियों से भी मुलाकात की थी। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने अपने श्रीलंकाई समकक्ष के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों एशियाई देशों का भी मानना है कि उन्हें वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग को अधिक मजबूत बनाना चाहिए और नॉलेज बेस्ड कंपनियों की क्षमताओं का भरपूर लाभ उठाना चाहिए।
ईरान के रक्षा मंत्रालय के रक्षा उद्योग में उत्पादित कदीर और नसीर मिसाइलों को इस्लामी क्रांति फोर्स IRGC की नौसेना को सौंप दिया गया है। IRGC की नौसेना को इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए उपयुक्त अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम, ड्रोन विमान और सैन्य उपकरण भी सौंपे गए हैं। शनिवार को आयोजित हुए एक समारोह के दौरान नौसेना को स्वदेशी सैन्य हार्डवेयर की आपूर्ति की गई। समारोह में IRGC के चीफ कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी, IRGC नौसेना प्रमुख रियल एडमिरल अली रजा तंगसीरी और अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारी मौजूद थे। ये नए सैन्य उपकरण और हथियार एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन AIO में सैन्य विशेषज्ञों द्वारा विकसित किए गए हैं। नए घरेलू हथियारों में विभिन्न प्रकार के टोही और लड़ाकू ड्रोन, विभिन्न प्रकार के बख्तरबंद और रसद वाहन, निगरानी प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली शामिल हैं। IRGC नौसेना को विभिन्न प्रकार के क्रूज मिसाइल, लॉन्चर ट्रक, रडार और कमांड सिस्टम और 300 से 1000 किलोमीटर के बीच की रेंज वाले कई सौ क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल भी सौंपे गए हैं। इस अवसर पर IRGC नौसेना प्रमुख रियर एडमिरल अली रजा तंगसीरी का कहना था कि नए उपकरणों से IRGC नौसेना की आक्रामक क्षमताओं का विस्तार होगा और उसकी रक्षात्मक क्षमता बढ़ेगी।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अटक जेल भेजा गया। इमरान खान को तोशाखाना मामले में जेल की सजा सुनाई गई है। हालांकि पहले उनको अडियाला जेल भेजे जाने की योजना थी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत के जज हिमांशु दिलावर ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को इस मामले में 3 साल जेल की सजा और 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। गिरफ्तारी के बाद PTI के चेयरमैन को सड़क के रास्ते इलाहाबाद ले जाया गया। हालांकि इससे पहले उनको गिरफ्तार करने के बाद लाहौर हवाई अड्डे ले जाया गया, किंतु खराब मौसम के कारण उनको बाई रोड इस्लामाबाद ले जाने का फैसला किया गया। तोशाखाना केस में सजा सुनाए जाने के बाद इमरान खान को लाहौर से गिरफ्तार कर किया गया था। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पुलिस ने लाहौर और पेशावर में कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को निर्देश दिए जा चुके हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के संबंध में जहां भी प्रदर्शन किए जाएं, वहां से प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। इसी बीच तहरीक इंसाफ पार्टी के एक प्रभावी नेता शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर कोर कमेटी की बैठक आहूत की गई है। प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।
पाकिस्तान में एक मुसाफिर ट्रेन के पटरी से उतर जाने के कारण कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई जबकि 80 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से रावलपिंडी जा रही हजारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां सिंध प्रांत के एक कस्बे के निकट पटरी से उतर गईं। پاکستان کے جیو نیوز کی رپورٹ کے انوسار رویوار کو یہ حادثہ کراچی سے قریب 275 کلومیٹر دور شہزاد پور اور نواب شاہ کے بیچ استھت سرہاری ریلوے اسٹیشن کے نکٹ ہوا ہے۔ استھانیہ میڈیا کے مطابق گھائل یاتریوں کو علاج کے لیے نواب شاہ استھت اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے۔ ریلوے منڈل ادھیکشک رحمان نے پشٹی کی ہے کہ ٹرین درگھٹنا میں 10 ڈبے پٹری سے اترے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ادھک جانکاری پراپت کی جا رہی ہے۔ وہیں پولیس نے کہا ہے کہ پربھاوت بوگیوں سے یاتریوں کو نکالنے کے لیے ٹیمیں موقع پر موجود ہیں۔ استھانیہ پرشاسن کے انوسار درگھٹنا کے بعد آس پاس کے اسپتالوں میں آپات کال لاگو کر دیا گیا ہے۔
ایکوواس سرحد پشن افریقی دیشوں کے آرتھک سنگٹھن ایکوواس کی اور سے حملے کی چیتاونی کے بعد ودروہی نیتا نے سینیہ سہایتا کی مانگ کی ہے۔ ایکوواس کا ایک پرتنیدھی منڈل گروار کو مدھیستتا کرنے کے ادیش سے نائجر گیا تھا۔ وہ نائجر کے اپدست کیے راشٹرپتی سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، کنتو اس کو ملنے کی انومتی نہیں ملی۔ اسی بیچ ایکوواس نے نائجر پر حملہ کرنے کی یوجنا کو شکروار کو انتم روپ دے دیا ہے۔ نائجر کے راشٹرپتی کے وشیش دستے نے بدھوار کو اس دیش کے راشٹرپتی محمد بازوم کو راشٹرپتی بھون میں بند کرنے کے بعد ان کو ان کے پد سے ہٹا دیا تھا۔ بعد میں سینے ودروہ کرنے والے جنرل عبدالرحمان چیانی کو نائجر کے انترم پرمکھ کے روپ میں نیوکت کیا گیا۔ اب پشچمی افریقی دیشوں کے سنگٹھن ایکوواس ارتھات اکنامک کمیونٹی آف ویسٹ افریقن اسٹیٹس نے چیتاونی جاری کی ہے کہ نائجر میں سینیہ ودروہ کرنے والے اگر رویوار تک نرواچت راشٹرپتی محمد بازوم کو سطح واپس نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کے ورد بل پریوگ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری اور مالی اور برکنا فاسو نے کہا ہے کہ حملے کی استھتی میں وہ نائجر کی رکشا کے لیے سامنے آئیں گے۔
وینزویلا کے راشٹرپتی نے بتایا ہے کہ ان کی سرکار کو گرانے کے لیے امریکہ کے پور راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے کھل کر ہستکشیپ کیا تھا۔ وینزویلا کے راشٹریہ بلوں کے گٹھن کے 86ویں استھاپنا دیوس کے اوسر پر اس دیش کے راشٹرپتی نے بتایا کہ سن 2018 میں امریکہ کے تتکال راشٹرپتی ٹرمپ نے کولمبیا کے تتکالین راشٹرپتی کو آدیش دیا تھا کہ وہ وینزویلا میں سرکار کو گرانے کے شڈیانتر کو ویوہارک بنوائیں۔ اگست 2018 کو وینزویلا کے راشٹرپتی مادورو کے بھاشن کے سمے ایک وسفوٹک پدارتھ سے بھرا ہوا ایک ڈرون سبھا استھل میں گھسایا۔ مادورو کے سرکشا بلوں میں سے ایک نے اسے لکشیہ بنا کر اس پر حملہ کر دیا، جس کے کارن وہ ایک عمارت سے ٹکرا کر گر گیا۔ حالانکہ اس گھٹنا میں وینزویلا کے راشٹرپتی کو کوئی چوٹ نہیں پہنچی، بلکہ انہیں اپنا بھاشن روک کر سبھا استھل سے جانا پڑا۔ گھٹنا کے دوران وینزویلا کے ساتھ راشٹریہ بل گھائل ہو گئے تھے۔
سنیوکت راشٹر سنگھ کے مہا سچیو کہتے ہیں کہ ایک بار پھر پرمانو یدھ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ انٹونیو گوٹیریس کے انوسار ورتمان سمے میں کہ جب وشو کے کچھ دیش پرمانو ہتھیار کے پریوگ کی دھمکی دے رہے ہیں، ایسے میں دھرتی پر پرمانو یدھ کا خطرہ پہلے سے کہیں ادھک بڑھ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیت یدھ میں جس طرح سے خطرہ بڑھا تھا، آج اس کی سمبھاونا پھر بڑھ گئی ہے۔ گوٹیریس کے انوسار کچھ دیش اکارن ہی پرمانو ہتھیاروں کے پریوگ کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اس پرکار کی دھمکیوں کا پربھاؤ پوری دنیا پر پڑتا ہے۔ راشٹر سنگھ کے مہا سچیو نے پرمانو شستروں کے نشکریہ بنائے جانے کے بارے میں کہا کہ سنیوکت راشٹر سنگھ کے نرستریکرن کی سوچی میں پرمانو شستروں کا نرستریکرن کو پراتھمکتا حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پرمانو خطرے کو دور کرنے کا ایک ماتر مارگ پرمانو ہتھیاروں کو نش کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک ایک بار ہمیشہ کے لیے کام نہیں کیا جاتا، اس سمے تک ہمیشہ ہی پرمانو یدھ کا خطرہ بنا رہے گا۔ سنیوکت راشٹر سنگھ کے مہا سچیو کے صلاح کار نے گوٹیریس کے ایک سندیش کو جاپان کے ہیروشیما پر پڑھ کر سنایا، جس میں یہ باتیں کہی گئی تھی۔ ہیروشیما میں ہی امریکہ نے دشکوں پہلے اپنا پہلا پرمانو بم پریوگ کیا تھا، جس کے پرینام سوروپ ویاپک استر پر جاپان میں وناش ہوا۔
اتری کوریا کے نیتا نے یدھ کے نئے آیاموں کے انوروپ دیش کے بھیتر ہلکے ہتھیاروں کے نوینیکرن اور سینا کی اگریم پنکتی کی اکائیوں کے پریوگ پر بل دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। राजनीतिक चर्चा में आज हम बात करेंगे भारत में कश्मीर के संदर्भ में धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई की। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ उनके समर्थकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। ये विषय भी राजनीतिक चर्चा में शामिल रहेगा। इस्लामी गणतंत्र ईरान और ताजिकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण टनल का उद्घाटन हुआ है, इस बारे में भी हम एक जायजा पेश करेंगे। तो चर्चा के विषय यही है और हम करते हैं धारा 370 को लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई से। भारत के सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर के संदर्भ में धारा 370 को लेकर सुनवाई जारी है, जिस पर कश्मीरियों की नजर लगी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस संदर्भ में एक बयान दिया है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर जम्मू कश्मीर की जनता की नजर है और हम ये आशा प्रकट करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होगा। श्रीनगर में संवाददाताओं के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि चार वर्ष पहले जिस तरह से इस रजीम ने हमारे हकूक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हमसे छीने हैं, हमें पूरी आशा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हितों का ख्याल रखेगा। उन्होंने कहा कि हमारा ये मानना है कि जो रिश्ता हमारे देश के साथ है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा इदारा है जिस पर हमें पूरा एतमाद है। उन्होंने कहा कि भाजपा यहाँ ताकत के बल पर हमको खामोश कर रही है और यहाँ मानव अधिकार का उल्लंघन भी हो रहा है, और हम धारा 370 और 35A के हवाले से जितनी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है और जब अब उसकी सुनवाई हो रही है, हम ये आशा प्रकट कर सकते हैं और हमें आशा भी है और हम ये देखना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर की जनता के साथ इंसाफ करेगा और हम इस पर पूरा उम्मीद हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा हमें ताकत के बल पर खामोश कराना चाहते हैं और वो तामीर तरक्की का ढुंढोरा पीटते हैं, परंतु ज़मीनी स्तर पर सिचुएशन बिल्कुल अलग है। अगर सड़कों से सुरक्षा कर्मियों को हटाया जाए तो पता चलेगा कि यहाँ शांति है या नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बात करने की भी अनुमति नहीं है, और अगर कोई बात करना चाहता है अभी उसने बात भी समाप्त नहीं की होती है उस पर UAPA लग जाता है। उन्होंने कहा कि अनगिनत लोगों को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया है और उन्हें मुख्तलिफ जेलों में भर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे स्थिति में सुधार नहीं, बल्कि कोई भी समय ऐसा आ सकता है जब स्थिति हाथ से बाहर जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमारा ये मानना है कि देश के जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ हैं और हम देश के साथ अटूट रिश्ता चाहते हैं, और अटूट रिश्ता उसी समय बन सकता है जब जम्मू कश्मीर की जनता के हितों का ख्याल रखा जाए। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
जहाँ तक 370 का सवाल है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग या मुल्क के लोग बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं, क्योंकि सारी दुनिया जानती है जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद हमने 1947 में दो कौमी नजरिया यानी मजहब की बुनियादों पे तकसीम होने से इनकार किया और एक जमहूरी सेक्युलर हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया, ये सोच के कि हमारी एक खसूसियत है, वी हैव अ यूनिक आइडेंटिटी। और जब पूरे उस वक्त के मुल्क की लीडरशिप ने हमें ये यकीन दिलाया कि हमारी जो खसूसियत है, हमारी जो यूनिक आइडेंटिटी है, वो हिंदुस्तान के अंदर महफूज रहेगी और हिंदुस्तान के आईन के अंदर हमें गारंटीज मिली और हमने इस मुल्क का اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا۔
اس بیچ جموں کشمیر میں ہنسک گھٹناؤں کا کرم بھی جاری ہے۔ پولیس پروکتا کے انوسار سیماوردی چھیتر میں ایک بار پھر گھسپیٹھ کا پریاس ہوا، جو سرکشا کرمیوں نے اسپل بنا دیا۔ اس میں ایک ملٹنٹ کے ہتات ہونے کی سوچنا ہے۔ سبتی محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کاریکرم راجنیتک چرچا۔
پاکستان میں پورو پردھان منتری عمران خان کی گرفتاری کی خبر آتے ہی ان کے سمرتھکوں نے ویروھ پردرشنوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ جائزہ پیش کر رہے ہیں قائم رضوی۔
پاکستان کے پورو پردھان منتری عمران خان کی گرفتاری کی گھوشنا کے ساتھ ہی ان کے سمرتھکوں نے پردرشن کرنے آرمبھ کر دیے ہیں۔ جیسے ہی سنچار مادھیموں میں عمران خان کی گرفتاری کی خبریں سامنے آئیں، ویسے ہی ان کے سمرتھک سڑکوں پر نکل آئے۔ پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد، پشاور اور اس دیش کے کئی انیہ شہروں میں عمران خان کے سمرتھن میں پردرشن کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے ایک نیایالے نے توشہ خانے سے سمبندھت معاملے میں اس دیش کے پورو پردھان منتری کو 3 ورشوں کی سزا سنائی ہے۔ اسی کے ساتھ ان پر 5 ورشوں تک کے لیے راجنیتک گتیویدھیوں پر بھی پرتیبندھ لگ گیا ہے۔ کرکٹ سے راجنیتی میں آنے والے عمران خان پر اپنے پد کا دروپیوگ کرنے کا بھی آروپ ہے۔ نیایالے کے آدیش کے بعد پاکستان کے پورو پردھان منتری کے وکیل نے نیایالے کے فیصلے کی نندا کی ہے۔ انہوں نے اس کو نیایالے کی ہتیا بتایا ہے۔ گوہر خان کا کہنا تھا کہ ہم کو سوال کرنے کی بھی انومتی نہیں دی گئی، ہم نے ایسا انیائے کبھی نہیں دیکھا۔ عمران خان کو لاہور میں ان کے آواز سے گرفتار کر کے جیل لے جایا گیا۔ اسی بیچ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کا ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے، جس میں انہوں نے اپنے سمرتھکوں سے چپ نہ بیٹھنے کا آہوان کیا ہے۔ اپنے سندیش میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جب میری یہ بات تم تک پہنچے گی، اس سمے تک میں جیل جا چکا ہوں گا۔ آپ لوگ اپنے گھروں میں خاموش نہ بیٹھے رہیے گا، آپ سڑکوں پر آ کر پردرشن کیجیے۔ اپنے سندیش میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ سنگھرش میں نے اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے اپنے بھوش اور تمہارے بچوں کے بھوش کے لیے کیا ہے۔ اسی کے ساتھ عمران خان نے اپنے سمرتھکوں سے انوروھ کیا ہے کہ وہ شانتی پورن ڈھنگ سے ہی پردرشن کریں۔ تحریک انصاف پارٹی کے نیتا نے ویڈیو سندیش میں اپنی گرفتاری کو لندن یوجنا کا کاریانوین بتایا ہے۔ تحریک انصاف پارٹی کے مہا سچیو نے عمران خان کی گرفتاری پر پرتکریا دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دیش میں شانتی پورن پردرشن کرنے کا ادھیکار ہر ناگرک کو حاصل ہے۔ پاکستان کے پورو ودیش منتری شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کا آدیش بہت ہی خطرناک فیصلہ ہے جو کہ سنیوجت ہے۔ عمران خان کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ نیایالے سے فیصلے میں پنروچار کہنے کا انوروھ کریں گے۔ قانون کے جانکاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان کو جیل کی سزا کے کارن بھوش میں چناؤں میں بھاگ لینے کی سمبھاونا اب سماپت ہو چکی ہے۔ شاید اسی وچار کے ساتھ پاکستان کے پورو پردھان منتری کو جیل بھیجا گیا ہے۔
اسلامی گڑتنتر ایران اور تاجکستان کے بیچ ایک ٹنل کا ادگھاٹن ہو رہا ہے، جسے کافی مہتو کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جائزہ پیش کر رہے ہیں اختر عباس۔
کئی اتار چڑھاؤ کے بعد آخرکار ایران اور تاجکستان کے بیچ سنیکت اور رچناتمک سہیوگ کی ایک اور مثال فائدہ اٹھانے کے لائق ہو گئی ہے۔ इस संबंध में ताजिकिस्तान के परिवहन मंत्रालय ने घोषणा की है कि इस्तकलाल टनल को पूरा करने का काम, जो ताजिकिस्तान के मध्य भाग को इस देश के उत्तरी भाग से जोड़ता है, स्वतंत्रता दिवस के जश्न से पहले पूरा कर लिया जाएगा। ताजिकिस्तान की सोवियत संघ से आजादी का ऐलान 32 साल पहले 1991 में हुआ था। इस्तकलाल सुरंग का निर्माण 2003 में ईरान और ताजिकिस्तान के अधिकारियों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुरू हुआ था। निसंदेह ताजिकिस्तान की इस्तकलाल या स्वतंत्रता सुरंग इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे भाई और मुस्लिम देश ताजिकिस्तान में ईरानी विशेषज्ञों के निर्माण के एक और दस्तावेज के रूप में माना जाता है। इस लंबी सुरंग द्वारा ताजिकिस्तान के उत्तरी और केंद्रीय भाग को जोड़ने की वजह से इस्तकलाल सुरंग का महत्व और अधिक स्पष्ट हो जाता है। 5 किलोमीटर लंबा इस्तकलाल टनल दुशंबे खुजंद राजमार्ग पर ताजिकिस्तान की राजधानी दुशंबे से 90 किलोमीटर उत्तर में अंजाब पर्वतीय दर्रे के नीचे से होकर गुजरता है। तय यह है कि ताजिकिस्तान की इस्तकलाल या स्वतंत्रता सुरंग को 9 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, ताकि इसी दिन देश की आजादी की 32वीं वर्षगांठ के दिन इसे परिचालन में लाया जा सके। इस लंबी सुरंग का निर्माण ईरानी विशेषज्ञों द्वारा किया गया था और इसे स्वदेशी ईरानी तकनीक के साथ ताजिकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। ताजिकिस्तान के बुद्धिजीवी समाज के बावजूद इन तथ्यों को याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ईरान ताजिकिस्तान के बुनियादी ढांचे के विकास कार्यक्रमों में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। ताजिकिस्तान में तेहरान द्वारा कार्यान्वित सभी परियोजनाओं को इस देश में ईरान की सकारात्मक उपस्थिति के रूप में देखा जा सकता है। इसके बावजूद तेहरान और दुशंबे के बीच 32 साल के संबंधों के काल में ईरान ताजिकिस्तान संबंधों के विस्तार में रोड़े अटकाने वाले कुछ दुश्मनों की संकीर्ण सोच की वजह से दोनों फारसी भाषी देशों के बीच संबंध संदेह का शिकार रहे हैं। इसके बावजूद और पिछले 3 दशकों में तेहरान और दुशंबे के बीच संबंधों में बार बार उतार चढ़ाव के बावजूद कुछ विशेषज्ञों ने तेहरान और दुशंबे के बीच संबंधों को स्थायी रूप से खत्म करने को असंभव करार दिया है। इस संबंध में ताजिकिस्तान के राजनीतिक विशेषज्ञ सैफुल्ला सफरोफ का मानना है कि ताजिकिस्तान के लोगों का ईरान के लोगों के प्रति जो प्रेम है उसको बयान नहीं किया जा सकता। इस ताजिक विशेषज्ञ का कहना है कि ईरान और ताजिकिस्तान दो भाई और मित्र देश हैं और ताजिकिस्तान के नागरिकों को भविष्य में तेहरान और दुशंबे के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीद है।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है।
प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम कुरान ईश्वर चमत्कार।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। आइए पहले सूरह मोमिनून की 31वीं और 32वीं आयतों की तिलावत सुने।
ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون।
پھر ان کے پشچات ہم نے ایک دوسری جاتی کو بنایا، تو ان میں ہم نے سوئم انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا کہ جو لوگوں سے کہے کہ ایشور کی اپاسنا کرو کہ اس کے اترکت تمہارا کوئی پوجیہ نہیں ہے، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟
اس سے پہلے کی آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی جاتی کے ورتانت کا ورنن ہوا اور بتایا گیا کہ ان کی جاتی کے سبھی کافر ایشور کی اور سے دنڈ سوروپ بھیجے گئے طوفان میں ہتاحت ہو گئے۔ یہ آیتیں سمود جاتی کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ایشور نے حضرت صالح علیہ السلام نامک ایک پیغمبر کو ان کے بیچ بھیجا۔ انہوں نے بھی انے پیغمبروں کی بھانتی لوگوں کو انن ایشور کی اپاسنا کا نمنترن دیا اور انہیں اس کے اترکت کسی کی بھی اپاسنا کرنے سے روکا، کیونکہ کفر ایوم انیکیشورواد کسی سے بھی نہ ڈرنے کا کارن بنتا ہے اور ہر پرکار کے غلط ایوم انوچت کاری کا مارگ منشی کے سمکش کھول دیتا ہے۔ جبکہ ایشور پر سچا ایمان اور اس کے دنڈ کا بھے برے کرموں و پاپوں سے روکتا ہے۔
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ پیغمبروں کو بھیج کر لوگوں کا مارگ درشن کرنا اور انہیں نرک کی آگ سے ڈرانا ایشور کی پرمپراؤں میں سے ایک رہا ہے۔
پیغمبر منشی ہی ہوتے ہیں اور لوگوں کے بیچ سے ہی نیوکت ہوتے ہیں تاکہ پورے سماج کے لیے آدرش رہیں، اور کوئی بھی ویکتی ایمان کے سمبندھ میں کسی بھی پرکار کا بہانہ نہ بنا سکے۔
آئیے اب سورہ مومنون کی 33 اور 34 آیتوں کی تلاوت سنیں۔
وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون۔
اور ان کی جاتی کے سرداروں نے جنہوں نے انکار کیا اور پلے کے دن کی بھینٹ کو جھٹلایا اور جنہیں ہم نے سانسارک جیون میں سکھ پردان کیا تھا، لوگوں سے کہا کہ یہ تو بس تم ہی جیسا ایک منشیہ ہے، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے یہ بھی کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے یہ بھی پیتا ہے، اور یدی تم اپنے ہی جیسے کسی منشیہ کے آگیاکاری ہوئے تو نشچے ہی تم گھاٹا اٹھانے والے ہوگے۔
پیغمبروں کے اسپشٹ ترک کے مقابلے میں جو لوگوں کو ستیہ کے مارگ پر چلنے اور بھلے کرم کرنے کا نمنترن دیتے تھے، وبھن جاتیوں کے دھنوان اور تتھا کتھت پرتشٹھت لوگ ان کا ویروھ کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کی باتوں کو اپنے لیے ہانیکارک سمجھتے تھے اور سوچتے تھے کہ یدی لوگ پیغمبروں کا انوسرن کریں گے تو سماج میں ان کا استھان کمزور ہو جائے گا۔
ان کی سب سے پہلی آپتی یہ تھی کہ یہ لوگ ارتھات پیغمبر ہمارے ہی جیسے ہیں اور ان میں تتھا ہم میں کوئی انتر نہیں ہے۔ یدی ایشور ہمارا مارگ درشن کرنا چاہتا ہے تو اسے فرشتوں جیسے ہم سے ادھک شریشٹھ جیووں کو بھیجنا چاہیے تاکہ ہم ان کی بات مان لیں۔ یہ لوگ جو ہماری ہی بھانتی جیون بتاتے ہیں، ہماری ہی طرح کھاتے اور پہنتے ہیں، کس پرکار جیون میں ہمارے مارگ درشک ہو سکتے ہیں؟
روچک بات یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جاتی کے سرداروں کو اپیکشا تھی کہ لوگ ان کی بات کو مانیں اور ویرودھ نہ کریں، کنتو وہ لوگوں دوارا اس ویکتی کے انوسرن کو غلط اور گھاٹا بتاتے تھے جس کی کتھنی اور کرنی سچائی اور بھلائی کے اترکت کچھ اور نہ تھی۔
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ ایک ایشورواد کا نمنترن اتیاچاری شاسکوں اور دھنوانوں کے ورچسو سے لوگوں کی سوتنترتا کا مارگ پرشست کرتا تھا۔ اسی کارن یہ دو گٹ پیغمبروں کا سب سے ادھک ویروھ کیا کرتے تھے۔
دوسروں کی باتوں کا انوسرن یدی ترک اور بدھی پر آدھارت ہو تو نہ کیول یہ کہ اپریے ایوم نندنیہ نہیں ہے، بلکہ یہ منشی کی پرگتی و پریپورنتا کا کارن بھی بنتا ہے۔ وستوتا شکشا و پرشکشا کی ویوستھا اسی پر آدھارت ہے۔
یا صفا القلوب یا جلا القلوب يا جلال
آئیے اب سورہ مومنون کی 35ویں 36ویں اور 37ویں آیتوں کی تلاوت سنیں۔
أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين۔
کیا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی و ہڈیاں بن جاؤ گے تو قبر سے باہر نکالے جاؤ گے؟ اسمبھو سی بات ہے، اسمبھو سی بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ جیون تو ہمارے اس سانسارک جیون کے اترکت کچھ نہیں ہے، یہی ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم مرنے کے بعد کدابھی پناہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔
پیغمبروں کے نمنترن کا پہلا چرن انیک ایشورواد سے دوری اور ایک ایشورواد کو ماننے پر آدھارت تھا۔ پھر جو لوگ ایک ایشورواد کو سویکار کر لیتے تھے ان کے سمکش پرلے اور مرتیو کے پشچات پرلوک میں لوگوں کو پناہ جیوت کیے جانے کی بات پرستت کی جاتی تھی، کنتو ویرودھی ایک ایشورواد اور انیک ایشورواد کے بارے میں بات کرنے کے استھان پر پرلے کی بات کرتے تھے اور اسے اسمبھو ایوم ترکہین بات بتاتے تھے تاکہ لوگوں کو پیغمبروں کے انوسرن سے دور رکھ سکیں۔
جبکہ پرلے کو ماننے کا نمبر ایک ایشورواد کی سویکرتی کے بعد آتا ہے اور تارکک درشٹی سے بھی اسے رد کرنے کا کوئی کارن نہیں ہے، چاہے کیول بھوتک انوبھووں اور ودت اندریوں پر بھروسہ کرنے والوں کو اس کا آنا اسمبھو ہی کیوں نہ پرتیت ہوتا ہو۔
جن دھنوانوں اور ستا پریمیوں کو نرنکش سوتنترتا اور ایشوریہ پورن جیون کی عادت ہو اور جو کیول بھوتک آنندوں کی پراپتی کے ہی پریاس میں رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس سورگ میں ان کا کوئی استھان نہیں جس کا وچن پیغمبروں نے دیا ہے، اتہ وہ اسے اسمبھو بتانے کا پریاس کرتے ہوئے نرادھار ترکوں سے اس کا انکار کرتے ہیں۔
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ جس ایشور نے منشیہ کو مٹی سے بنایا ہے کیا وہ اسے مٹی میں مل جانے کے بعد پنہ جیوت نہیں کر سکتا؟
منشی کے جیون کو کیول سانسارک جیون تک سیمت کرنا اسے پشوؤں کے استر پر نیچے لے آنے کے سمان ہے، کیونکہ ان کا جیون کیول اسی بھوتک سنسار تک سیمت ہے۔
شروتاؤ، اب پرستت ہے اگلا کاریکرم آج کل۔
آج کل
دوستوں، کاریکرم آج کل میں آپ کا سواگت ہے۔ سواتی اور رویش زیدی کا سلام سویکار کیجیے۔ آج کے کاریکرم میں ہم زائنی شاسن کی سب سے مہنگی خفیہ اور جاسوسی سیواؤں کے بارے میں چرچا کریں گے، ہمارے ساتھ بنے رہیں۔
دوستو، زیونی شاسن نے جو بل اور اویدھ قبضے کے آدھار پر استھاپت کیا گیا تھا، اس ناجائز ڈھانچے کو بنائے رکھنے کے لیے ویاپک سین اور سرکشا سنگٹھنوں کا گٹھن کیا ہے۔ اس لیے ایک سسجت سین سنرچنا کا نرمان اس اویدھ شاسن کے نرماتاؤں کی پراتھمکتاؤں میں سے سب سے اوپر رہا ہے۔ سنیکت راج امریکہ اور یورپی سہیوگیوں کے سمرتھن کے تحت زیونیوں نے اس سین سنرچنا کے نرمان پر ان شیتروں کی تلنا میں ادھک دھیان دیا ہے جو سامان سین کاریوں کے بجائے मुख्य रूप से आतंकवादी प्रकृति का है। पिछले कार्यक्रम में हमने विभिन्न सैन्य इकाइयों और विवादों के गठन में ज़ायोनी शासन के लक्ष्यों के बारे में बात की थी और हमने बताया था कि ज़ायोनी अपने अवैध शासन को स्थिर बनाए रखने के लिए विभिन्न सैन्य बलों और खुफिया एजेंसियों और आतंकवादी इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं खुफिया एजेंसियों में से एक है अमान। अमान इसराइली रक्षा बलों की एक खुफिया एजेंसी है जो ज़ायोनी शासन की जासूसी, गुप्त संचार और सूचना संगठन के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्य उद्देश्य खुफिया जानकारी एकत्र करना है। साथ ही ये एजेंसी अपनी आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है।
अमान का गठन 1950 में हुआ था। इसराइली रक्षा बलों ने अमान को खुफिया और सुरक्षा गतिविधियों के लिए एक आधिकारिक एजेंसी के रूप में स्थापित किया था। अमान का मुख्यालय तेल अवीव में स्थित है। अमान अपने गुप्त जासूसी और तकनीकी जासूसी कार्यक्रम के लिए विख्यात है और अवैध ज़ायोनी शासन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका प्रबंधन सीधे सेना के चीफ ऑफ स्टाफ की देखरेख में किया जाता है और कैबिनेट से इसके आदेश प्राप्त होते हैं। ज़ायोनी शासन के सैन्य कानूनों के अनुसार अमान सेवा, जो इस शासन की सबसे बड़ी और सबसे महंगी खुफिया और जासूसी सेवाओं में से एक मानी जाती है, इस शासन की कैबिनेट को रणनीतिक मूल्यांकन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इस खुफिया सेवा की रिपोर्टों के आधार पर ही ज़ायोनी शासन की कैबिनेट की सामान्य नीतियां तैयार की जाती है, विशेष रूप से क्षेत्र में प्रतिरोध समूहों के साथ संघर्ष के क्षेत्र में। अमान की स्थापना से पहले आतंकवादी संगठन हगाना और विशेष रूप से इसकी खुफिया सेवा, जिसे शाई कहा जाता था, फिलिस्तीन और अरब देशों में रहने वाले अरबों के साथ युद्ध में हगाना आतंकवादी समूह महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करने और राजनीतिक संघर्ष के लिए ज़ायोनी नेताओं तक उस जानकारी को पहुंचाने का काम भी करता था।
दोस्तों, शाही का विशेष मिशन फिलिस्तीनी राजनीतिक और प्रतिरोध के जालों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और उनके खिलाफ आतंकी अभियानों को अंजाम देने के लिए हगाना की सैन्य शाखा से परिचित कराना था। वर्ष 1950 से अमान खुफिया सेवा की स्थापना के साथ ये कार्य ज़ायोनी शासन के इस जासूसी संगठन को सौंपा गया था। अमान अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के बाहर ज़ायोनी शासन या उसके सैन्य और राजनीतिक हितों के खिलाफ युद्ध या सैन्य कार्रवाई की संभावनाओं के बारे में तत्काल चेतावनी भेजने के लिए भी जिम्मेदार है। अमान को ज़ायोनी शासन की एक स्वतंत्र सेवा माना जाता है और ये इस शासन की सेना, नौसेना और वायुसेना के बराबर है, लेकिन इसकी सैन्य संरचना जासूसी सेवाओं के प्रावधान पर आधारित है और इसका मूल मिशन जानकारी एकत्र करने की अपनी उच्च क्षमता के परिणाम स्वरूप इसराइली सेना को अपने मिशन को पूरा करने में मदद करना है। यह सूचना सेवा, जो सीधे ज़ायोनी शासन के युद्ध मंत्री की देखरेख में है, सेना के ढांचे के बाहर विशेष मिशनों को अंजाम देती है।
अमान का चीफ ज़ायोनी सेना का एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी होता है। वह शबाक और मुसाद के प्रमुखों के समान निर्णय लेने और सूचना नीति में भाग लेते हैं। ये तीनों संगठन ज़ायोनी शासन के खुफिया सेवा का आधार माने जाते हैं। अमान की गतिविधियों की मुख्य प्रकृति और अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के आसपास के महत्वपूर्ण देशों की है और इसका नेतृत्व आमतौर पर जनरल रैंक वाला एक अधिकारी करता है। इस खुफिया सेवा की गतिविधियां अवैध ज़ायोनी शासन के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यह अवैध अधिकृत क्षेत्रों और स्वशासी संगठनों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों के साथ साथ अवैध अधिकृत फिलिस्तीन से सटी अरब सरकारों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जासूसी और छिपकर बात करने के कई मिशनों के लिए जिम्मेदार होते हैं। उदाहरण के तौर पर इस खुफिया यूनिट की कुछ इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी एकत्रित करने और निगरानी सुविधाएं गोलान हाइट्स में स्थित हैं, जिसमें हर अविटल में एक सुविधा भी शामिल है जो सीरिया पर नजर रखती है। इसके कुछ अन्य जासूसी उपकरण माउंट हरमन में स्थित हैं, जो लेबनान और सीरिया दोनों पर नजर रखते हैं।
दोस्तों, अमान सेवा की गतिविधियों में आई तेजी के बाद ज़ायूनी शासन के बढ़ते आक्रामक और आतंकवादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए विभिन्न आंतरिक विभागों और इकाइयों को इससे जोड़ा गया। अमान सेवा में खुफिया विभाग, विदेशी संचार विभाग, खुफिया और लड़ाकू नियंत्रण विभाग, भूमि खुफिया विभाग, नौसेना खुफिया विभाग, वायु खुफिया विभाग और मीडिया विभाग शामिल हैं। इसी तरह इस खुफिया इकाई में कई इकाइयां शामिल हैं, जिनमें वायुसेना से संबंधित लमदान जासूसी इकाई, नौसेना से संबंधित मदान खुफिया और जासूसी इकाई, विशेषक मनोवैज्ञानिक युद्ध इकाई, सैन्य सेंसरशिप इकाई, 8200 इकाई, 9990 इकाई, 504 विशेष जासूसी भर्ती इकाई, साइबर इकाई, मैपिंग विशेषक इकाई, विशेष सूचना पुनर्अनुमान इकाई, हथसाब खुफिया और मानव सुरक्षा इकाई, वैज्ञानिक अनुसंधान इकाई और सूचना सुरक्षा इकाई शामिल हैं। साथ ही अमान की सैन्य खुफिया शाखा के सदस्यों को कई अन्य क्षेत्रों में कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जिनमें शूटिंग, विस्फोटक तैयार करना, नेविगेशन, ट्रैकिंग से बचना, फोटोग्राफी, कोडित संदेश भेजना और अरब रीति रिवाजों और परंपराओं और अरब देशों के धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों के बारे में सीखना शामिल है।
इतनी विशेषता और आधुनिकता के बावजूद ज़ायूनी शासन के इस आतंकवादी खुफिया संगठन के इतिहास में कई विफलताएं दर्ज हैं। अमान की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक 1950 के दशक में ही मिस्र में ऐसा हुआ था, जिसने ज़ायूनी शासन के तत्कालीन रक्षा मंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। कहानी यह थी कि अमान सेवा ने मिस्र के यहूदियों के एक समूह को 1954 में ऑपरेशन सुसन्ना नामक एक ऑपरेशन के साथ नियुक्त करके मिस्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन से संबंधित नागरिक संस्थानों पर हमला करना था, जैसे सिनेमा घरों, पुस्तकालयों और अमेरिकी शैक्षणिक केंद्रों में बम धमाके करने थे और इन हमलों का आरोप मुस्लिम ब्रदरहुड पर लगाया जाना था। लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर के बीच अच्छे संबंधों को बाधित करना था। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो उस समय सक्रिय रूप से मिस्र के राष्ट्रवाद का समर्थन करता था, उसको इस आतंकवादी घटनाओं द्वारा यह विश्वास दिलवाना था कि मिस्र सरकार धार्मिक संगठनों के सामने शक्तिहीन है।
दोस्तों, ऑपरेशन सुसन्ना का दूसरा लक्ष्य मिस्र में हिंसा और अस्थिरता का माहौल पैदा करना था, ताकि उसका फायदा उठाकर ब्रिटिश सरकार को मिस्र की स्वेज नहर में अपनी आतंकी ज़ायूनी सेना को बनाए रखने के लिए राजी किया जा सके। लेकिन मिस्र इस ऑपरेशन के मुख्य साजिशकर्ताओं को ढूंढ निकालने में कामयाब रहा और ज़ायूनी शासन द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार करने के बावजूद इससे इस शासन की बदनामी हुई, जिससे इस घटना के दो सप्ताह बाद उस समय अमान के निदेशक बिन्यामिन गिबली ने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा फरवरी 1955 में इस शासन के तत्कालीन रक्षा मंत्री ने पिनहास लावोन की इस घटना के बाद उसे लावोन की कहानी के नाम से जाना जाने लगा को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा।
ऑपरेशन सुसन्ना का विध्वंसक अभियान और लेवॉन की कहानी, जिसके कारण दुनिया में ज़ायोनी शासन की बदनामी हुई, इस अवैध शासन की सरकार के पतन और उसके प्रधानमंत्री मोशे शेरेट की बर्खस्तगी तक जारी रहा। इसके अलावा यह ऑपरेशन इस बात का कारण बना कि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इसराइल ने अपने संबंधों में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता खो दी, जिसे बहाल करने में वर्षों लग गए। साथ ही इस घटना के बाद ज़ायोनी शासन में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली, जिसके उसकी सरकार के प्रभाव को प्रभावित किया। लेकिन इन सब के बावजूद 30 मार्च 2005 को इसराइल ने सार्वजनिक रूप से इस ऑपरेशन के जीवित जासूसों और इस शासन के अध्यक्ष को सम्मानित किया। मोशे कासव ने उनमें से प्रत्येक को सरकार की ओर से उनके प्रयासों के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किया। वहीं एक बात जो साफ हो गई थी वह यह थी कि वर्षों से इस ऑपरेशन में इसराइल अपनी संलिप्तता का आधिकारिक रूप से इंकार करता आ रहा था, जो इस घटना ने उसके आधिकारिक खंडन की पोल भी खोल दी। इसने इस शासन की विध्वंसक प्रकृति को दुनिया के सामने और अधिक स्पष्ट कर दिया।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए।
श्रोताओं, ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे थे। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔